यहाँ तक आए थे। शॉर्ट में हम देखेंगे कि ये दो तीन दिन में हमने क्या देखा है। तो क्रमबद्ध पर्याय ऐसा जब नाम हम सुनते हैं, तो वो नाम से हमें ऐसा लगता है कि यह पर्याय की चर्चा होगी। तो क्रमबद्ध पर्याय ये इस नाम की कोई पर्याय होगी, परंतु यह पर्याय नहीं है, परंतु वस्तु की व्यवस्था है जिसमें, क्योंकि द्रव्य जो है वो गुण पर्यायात्मक होता है और ये पर्याय हर समय में पलटती है। प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक समय में एक एक पर्याय होती है। तो ये जो पर्याय होती है तो वो क्रमबद्ध, यानी वो क्रम से होती है। प्रत्येक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है, उसके बाद दूसरे समय में दूसरी, तीसरे समय में तीसरी, चौथे समय में चौथी ऐसी होती है। यानी एक तो एक समयवर्ती है, परंतु वो निश्चित क्रम से होती है। और बद्ध यानी जो होनी है वही होती है, अन्य नहीं होती। तो इसको कहते हैं क्रम नियमित या क्रमबद्ध। ये नियत यानी निश्चित वही पर्याय होगी, उसी क्रम से होगी, उसी समय होगी, उस समय का उसका निमित्त भी निश्चित होगा। अभी जो हमने मंगलाचरण देखा है उसमें जो हमने देखा कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस देश में जिस काल में जिस विधि से जैसी होनी है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने देखा है, यहाँ सर्वज्ञ का हवाला दिया। उसके लिए प्रूफ क्या दिया कि जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा उनके ज्ञान में जाना है। उन्होंने किसी द्रव्य की कोई भी पर्याय बनाई नहीं है, वो बनाने वाले नहीं है, मात्र उसका उन्होंने ज्ञान किया है और उसका कथन भी उनकी वाणी में सहज रूप से आ जाता है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय की हम चर्चा गए दो तीन दिन से कर रहे हैं। कुछ प्रश्नोत्तर मेरे पास है, अभी तो मैं पढ़ूंगी तो आपको भी, अभी जो आज दो तीन जन नए आए हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि हमने दो तीन दिन में क्या क्या पढ़ा था। तो क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं? तो अभी हमने जो मंगलाचरण पढ़ा ना, उसी का अर्थ लिया यहाँ। ये जो मंगलाचरण है वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का जो ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय ने मारा भावना ने अनुप्रेक्षा लिखी है, बड़ा ग्रंथ है वो। और उसमें से जो लोक भावना अधिकार है उसमें से ये गाथाएं ली हुई है। तो उसमें कहते कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त की उपस्थिति में, निमित्त भी पक्का है उसका, निश्चित है, और जिस पुरुषार्थ पूर्वक। हमें क्या लगता है कि भगवान ने देखा है तो जो हो जाएगा अभी हम शांति से बैठ जाएंगे। तो जिस पुरुषार्थ पूर्वक हम अकेले काल को ही पकड़ लेते हैं और बाकी सबको भूल जाते हैं, तो एक ही चीज को पकड़ना, सर्वथा एक को ही मानना, उसको कहते हैं एकांतवाद। वो तो मिथ्यात्व है। तो उसी पुरुषार्थ पूर्वक, जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है, अभी हम तो अभी इसमें घटाए नहीं है, परंतु इसमें वो पांच समवाय भी घटेंगे, जो स्वभाव नियति पुरुषार्थ वगैरह जो है ना वो भी घटाएंगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वो भी घटाएंगे, निमित्त उपादान उसकी भी चर्चा इसमें सारी आएगी। पितृकाली उपादान भी इसमें होगा, क्षणवर्ती पर्यायों का वो भी होगा, पूर्ववर्ती पर्याय, और उस पर समय की योग्यता वाला उपादान वो भी यहाँ होगा, निमित्त भी होगा। ये सारी चर्चा इसमें क्रमबद्ध पर्याय के टॉपिक में क्रम से हम सीखेंगे, अभी उसकी हमने चर्चा की नहीं है। तो उसी द्रव्य की वही पर्याय उसी क्षेत्र में उसी काल में उसी निमित्त की उपस्थिति में, निमित्त कराता नहीं है, उसकी उपस्थिति है, और उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होती है, अन्यथा नहीं। दोनों प्रकार से पक्का किया, वैसी होती है और अन्यथा नहीं। इसी नियम को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। ये नियम है, वस्तु की ही व्यवस्था है। विश्व के जो सारे अनंत द्रव्य है उनमें ऐसी ही स्वयं सिद्ध वहाँ उसकी सुनिश्चित व्यवस्था है कि जिसके कारण हर द्रव्य की हर पर्याय अपने अपने निश्चित काल में निश्चित क्रम से, और जो होने वाली है वही सारा ही निश्चित है। तो सारा ही निश्चित है, अपने द्रव्य के भी सारे परिणाम निश्चित है और पर के भी है। तो पर जब हम पर्याय पर दृष्टि करते हैं तो किसी पर्याय को लाने का, किसी को हटाने का, किसी को जल्दी लाने का हमें विकल्प राग होता रहता है और हमारी बुद्धि उसी में चलती रहती है, तो चलायमान होती है, फिर नहीं हो सकती है। तो इसलिए उसका लक्ष्य छोड़कर हम अपने स्वभाव का लक्ष्य करेंगे तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक क्रमबद्ध पर्याय से हमें निराकुलता की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो हम अनादि से संयोगों की तरफ देख देख कर संयोग को जुटाने या हटाने में लगे रहे। तो ये संयोग भी जो प्राप्त होना है उसी समय प्राप्त होगा, समय से पहले भी नहीं होगा और भाग्य से अधिक भी नहीं होगा। तो ये सारी चर्चा क्रम से आने वाली है। तो क्रम का अर्थ होता है एक के बाद एक, क्योंकि पर्याय एक साथ होती नहीं है। अनंत गुणों की पर्याय एक साथ होगी, परंतु एक ही गुण की समझो ज्ञान गुण है तो उसकी दो समय वाली पर्याय एक साथ नहीं होती। पहली पर्याय का उत्पाद होता है, पूर्व पर्याय का व्यय होता है। अब ये वर्तमान की पर्याय है वो अगले समय में उसका व्यय होगा, नवीन पर्याय उत्पत्ति होगी। तो वो क्रम से आती है। और बद्ध का अर्थ होता है नियमित, निश्चित, वो जो होनी है वही होगी, अन्य नहीं होगी। उसको कहते हैं क्रमबद्ध या क्रम नियमित, दोनों शब्द आते हैं शास्त्र में। तो ये इसको हमने देखा था कि क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते। अब वो क्यों समझना जरूरी है क्रमबद्ध पर्याय? तो क्रमबद्ध पर्याय समझने की आवश्यकता, तो उसके स्वरूप जब समझ में आएगा तब क्रमबद्ध पर्याय की समझने की क्या आवश्यकता है ये हमें उसका एहसास हो जाएगा। क्योंकि जो जगत के सारे ही जो द्रव्य है वो कैसे है, हमने देखा था द्रव्य का लक्षण क्या है, सत, सत द्रव्य लक्षण। और वो सत कैसा है, उत्पाद वे द्रव्युत्तम सत। तो जगत के सारे ही पदार्थ जो है वो उत्पाद वे द्रव्यात्मक है। तो प्रत्येक समय में प्रति समय नवीन पर्याय का उत्पाद और पुराने पर्याय का व्यय होता रहता है। ये तो स्वयं चलित ऐसी ही वस्तु व्यवस्था है। और द्रव्य अपने स्वरूप से कायम रहता है, द्रव्य का स्वरूप कभी उसमें नष्ट नहीं होता, भले केवल ज्ञान की पर्याय हो या अल्प विकसित पर्याय हो। उसके कारण द्रव्य के स्वभाव में कुछ बढ़ोतरी हुई या घट गया कुछ ऐसा कभी नहीं होता। द्रव्य तो अनादि अनंत अपने स्वभाव से वैसे के वैसे विराजमान रहता है। तो वस्तु के इस परिणमन का कोई स्वभावगत नियम है या हम उसमें अपने चाहे जैसा यानी अपनी इच्छा के अनुसार उसमें कुछ परिणमन कर सकते हैं क्या, ऐसा प्रश्न हमें उठना स्वाभाविक है। क्योंकि हमारा भी हम एक द्रव्य है, हमें भी हमारे में जो उत्पाद व्यय हो रहा है उसमें हम अपनी इच्छा से कुछ अलग परिवर्तन कर सकते है क्या नहीं, ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रत्येक द्रव्य उसके अपने अपने निश्चित क्रमानुसार परिणमित होता है। यानी ये क्रम भी उसके द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता, वो उसके अंदर पड़ा है ऐसा धर्म कि कौन से समय में किस रूप परिणमन होना, ये द्रव्य का ही स्वभाव उसमें है। अभी जीव तो अनंत है, स्वभाव से तो सभी जीव एक समान है, परंतु किसी दो द्रव्यों के पर्यायों का क्रम एक में से यानी मिलता नहीं है, अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। हमें अभी क्या कोई कोई साइंस में खोज निकाली ना, क्लोन तैयार किए, तो ऐसा हर एक को ऐसा भ्रांति है, अरे दो जीव सिमिलर हो गए देखो, परंतु वहाँ हम क्या देखते, बाह्य जो शरीर की अवस्था है उस अवस्था को देख रहे, परंतु यहाँ क्रमबद्ध पर्याय में क्या है निश्चित की जो जीव द्रव्य है उसकी एक एक समय की पर्याय निश्चित है, और किसी दो द्रव्यों की पर्याय एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं मिलती। हम कहेंगे सिद्ध भगवान तो है ना, उनकी पर्याय आपस में मिल रही है, परंतु अनादि अनंत प्रवाह क्रम देखना, प्रत्येक जो किसी न किसी अन्य अन्य पर्यायों में से अन्य अन्य भाव में भटकता 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 है, उस दो जीवों के समझो एक ही माँ बाप के दो बच्चे है, तो फिर उनके भी परिणामों में अलग अलग होगा। अभी समझो दो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिए, अभी उसके आगे भी उनका अलग अलग पर्यायों का जो क्रम है, कोई जल्दी आगे बढ़ेगा, कोई धीरे से बढ़ेगा, कोई किसी के भाव कैसे होंगे क्या होगा, तो उसमें भी बहुत से डिफरेंसेस है। तो हरेक जीव के पर्यायों का जो क्रम है वो अलग अलग है, तो यह क्रम प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना निश्चित है, वो अपने प्रत्येक द्रव्य में ही ऐसी उसकी अपनी योग्यता बनी हुई है। इसलिए वर्तमान में अलग अलग वस्तुओं के पर्यायों में विभिन्नता दिखाई देती है। हमें तो ऐसा होता है ना, ये ऐसा क्यों, ये बच्चा तो अच्छा कर, हमारा सब सुनता है, दूसरा बच्चा ऐसा क्यों, या हमारे पास पैसा है उसके पास क्यों नहीं, वो गरीब क्यों, या उसके पास है हमारे पास क्यों नहीं, यानी हम तो क्या करते हैं कि दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, या ऐसा सोचते कि ऐसा क्यों नहीं, सब लोग अच्छा क्यों नहीं बर्ताव करते, एक ऐसा क्यों टेढ़ा बर्तन करता है, तो हम उसी में उलझे रहते। तो कोई भी दो जीवों की या दो द्रव्यों की पर्याय वो उसके अपने निश्चित क्रम अनुसार होगी। हम सोचते हैं, हम इच्छा करते हैं सब अच्छा वर्तन करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं, यह सुव्यवस्थित व्यवस्था किसी ने बनाई नहीं है, सर्वज्ञ ने जानी तो है परंतु उसको बनाने वाले कोई सर्वज्ञ नहीं है। ये बाकी तो बाद में हम देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, हमारा जो अभी पेज नंबर 28 पर आए हैं वहाँ से हम पढ़ेंगे। यानी क्रमबद्ध पर्याय क्या है उसका हमने शॉर्ट में देखा, और उसके लिए कुछ उदाहरण वगैरह भी देखे थे। आप इसका पहले का जो है विषय वो पढ़ना, 28 पेज पर उक्त कथन के अनुसार, नीचे से दूसरा पैराग्राफ गुजराती में मिला, उक्त कथन के अनुसार जिस अपेक्षा से केवली भगवान, यानी ये कौन सी अपेक्षा चल रही थी, कल जो चोपर प्रकाशक के बारे में देखा था ना कि क्रमबद्ध पर्याय प्रूव करने के लिए सबसे बड़ी हम सिद्धांत या लॉजिक उसके लिए तर्क देते हैं सर्वज्ञ का, वो सर्वज्ञता के आधार से क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करते हैं। तो आज तक जिन जिन पंडितों ने सर्वज्ञ को तो माना था, परंतु अब जो ये क्रमबद्ध पर्याय की बात जब स्वामी जी ने शास्त्र में से ही निकाल के बताई, तब उन्हें विरोध होने लगा। तो जब सर्वज्ञ को पहले से तो मानते आ रहे हैं इसलिए सर्वज्ञ का तो इनकार नहीं कर सकते थे, तो अब नई बात क्या बताई उन्होंने, हाँ सर्वज्ञ होते हैं, वो भूत को जानते, भूत यानी भविष्य, भूत काल को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, परंतु भविष्य को नहीं जानते, या वो ऐसा जानते हैं कंडीशनल सर, कैसे कि जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जिसको पहले नरक गति का नरकायु का बंद हुआ हो तो सम्य दर्शन प्राप्त किया तो भी नरक में चला जाएगा, ऐसे कंडीशनल जानते हैं। तो हम भी ऐसे ही जानते हैं, तो हमारे और उनमें ज्ञान में क्या विशेषता हुई, तो वो इसी डेफिनेट जानते हैं कि इस जीव के ऐसे भाव होंगे वो उसका ये परिणमन होगा, ऐसे निश्चित रूप से जानते हैं। और ये पंडित क्या कहने लगे कि नहीं नहीं वो भविष्य को तो नहीं जानते, और जब उनका कहना ऐसा खंडन कर दिया तो फिर कर क्या करते वो कि देखो नियम सार में क्या लिखा है कि केवली भगवान सबको जानते हैं, पर को जानते ये व्यवहार है और अपने को जानते हैं निश्चय है, तो व्यवहार झूठा होता है इसलिए वो पर को जानते ही नहीं, ऐसे ऐसे नहीं सर्वज्ञ का ही स्वरूप उन्होंने दूषित करना प्रारंभ किया। उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि जो शास्त्र में उन्होंने जो अलग अलग उसके लिए दलील बताए उसका गलत अर्थ निकाल कर उन्होंने पेश किया कि सर्वज्ञ का जो सही स्वरूप है उस स्वरूप में ही अपने ही मन कल्पना से उसमें दोष लगाए, तो भगवान का स्वरूप ही उन्होंने गलत प्रस्तुत किया, अकेले खुद ने नहीं माना परंतु पंडित थे, प्रवचनकार थे, तो लोगों को भी ऐसे भड़काना शुरू किया। तो उसके उत्तर में लिखते हैं यहाँ, उक्त कथन के अनुसार जिस अपेक्षा से केवली भगवान मात्र अपने को जानते हैं पर को नहीं, उस अपेक्षा से अर्थात निश्चय नहीं से तो सम्यक दृष्टि भी मात्र अपने को ही जानते हैं पर को नहीं। यानी कौन सी अपेक्षा बताई थी कि परमे तन्मय होकर नहीं जानते, पर इसकी बहुत विस्तृत चर्चा की थी। जैसे दर्पण के सामने कोई पदार्थ है तो वो पदार्थ का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, तो पदार्थ दर्पण के अंदर नहीं जाता, वो दर्पण की अपनी अवस्था है, बराबर। वैसे ज्ञान जब ज्ञेय को जानता है या जीव या आत्मा जब पर को जानता है तो पर पदार्थ के साथ एक में एक तन्मय होकर नहीं जानता है, ज्ञान अपने में रहकर पर संबंधी का ज्ञान कर लेता है। तो ज्ञान तो जानता है, तो ज्ञान जानता है तो किसको जानता है, तो किसको ये बताने के लिए वो जानता तो अपने पर्याय को ही, तो पर्याय को जानता है, परंतु वो कौन सी पर्याय हो रही थी ये बताने के लिए पर का अपेक्षा लेनी पड़ती ना, इसको जान रहा था वो, उसके अंदर में जो परिणमन हुआ है ज्ञान के उसी को जानता है, परंतु उसको कथन कैसे करे, तो कथन में इतना भेद करना पड़ता है क्योंकि उसके बिना हम समझाए कैसे। पहले एक उदाहरण लिया था कि यहाँ सारे एक मिट्टी का ढेर है और उसके हमने अलग अलग खिलौने बने, तो वो खिलौने काहे के है, मिट्टी के ही है सारे, परंतु उसके अलग अलग शेप हमने बनाए हैं, तो अलग अलग शेपों को हम कैसे समझाए। तब वहाँ कहते हैं हाँ ये डॉल है, ये बैल है, या और गाड़ी है, तो उसको हम पर वस्तु का नाम लेकर उसकी मिट्टी को हमने समझाना कि ये ऐसे शेप है, तो इतनी पर की अपेक्षा आ गई। तो इतनी पर की अपेक्षा आई थी, तो जब जब स्वाश्रित कथन होता है उसको मिट्टी का ही कहना, कथन में जब स्वाश्रित जिस चीज की जो वस्तु है उसको उसी की कहना, इसको खिलौनों को मिट्टी का ही कहना, वो है स्वाश्रित कथन, मिट्टी के आश्रय से कथन किया है। अब जब उन्हीं को हम कहेंगे ये गाड़ी का शेप है, ये बैल है, ये डॉल है, तो हमने पर का आश्रय लेकर उसका कथन किया, कथन में पराश्रय हुआ, वो बनाने में मिट्टी के खिलौने बनने में कोई पर का आश्रय नहीं था, तो ये कहते हैं पराश्रय कथन। वैसे ज्ञान तो अपने को ही जानता है, किसको जानता है, कौन सी पर्याय को, जो उस समय हो रही उसको, परंतु हम समझे नहीं कुछ, समझाओ ना उस किस चीज को जानता था, तो उसमें कथन करने के लिए पर की अपेक्षा लेनी पड़ी कि वो सामने माइक है तो इसको जान रहा है। अभी हम भी अभी सामने इस माइक को जान रहे हैं, या अभी ये आवाज रूप जो भाषा वर्गना रूप भाषा वर्गना शब्द रूप परिणमित हो रही है, तो इन शब्दों को हम जान रहे हैं, तो ये शब्दों को जान रहे हैं, ये शब्द संबंधी जो हमारा अपना ज्ञान है हम उसको जान रहे हैं। इसके शब्द तो पर है, उस संबंधी जो यहाँ ज्ञान हो रहा है उसी को हम जान रहे हैं, परंतु हम किसको जान रहे हैं, अपने ज्ञान को। लेकिन ज्ञान को जानने से कुछ उलझन में पड़ते हैं, शब्द संबंधी ज्ञान को जान रहे हैं, या बाहर ट्रैफिक की आवाज उस संबंधी ज्ञान को जान रहे हैं, या अभी हम मच्छर काट रहे हैं उस संबंधी ज्ञान को जान रहे हैं, या कोई और किसी को जान रहे हैं, तो उसमें पर की अपेक्षा कथन में आ गई कि अभी हम शब्द को जान रहे हैं, तो इतनी पर की अपेक्षा आ गई, तो कथन पराश्रित हुआ, जानना पराश्रित नहीं हुआ, और न पर को जानने का वहाँ निषेध हुआ, वो पर संबंधी ज्ञान तो हो रहा है, वो तो आत्मा की ही स्वकर प्रकाशक शक्ति है, वो तो उसका स्वभाव है, स्वभाव में कभी लिमिट नहीं होती, तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, तो ज्ञान किस किस को जानेगा, स्व और पर को सबको जानेगा, कितना जानेगा, अनंत को जानेगा, यानी उसमें कोई लिमिट नहीं है, ऐसा ही हरेक वस्तु के स्वभाव का स्वरूप होगा कि अनंत पदार्थों को जानेगा, अनंत काल वाले पदार्थों को जानेगा, उसमें भी लिमिट नहीं है, सारे हो, यानी काल अपेक्षा भी अनंत को, अनादि से अनंत तक को सबको जानेगा, जो प्रेजेंट नहीं है उसको भी जानेगा, जो दूर कहीं है उसको भी जानेगा, ज्ञान की ऐसी शक्ति है। हर द्रव्य में जो जो अपना स्वभाव है ना उसका, वो ऐसा ही है, परंतु हमें प्रयोजन तो अपने से है, इसलिए हम यहाँ धर्म धर्म अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य उद्गल द्रव्य की चर्चा नहीं करके हमारे अपने स्वभाव की चर्चा करें, क्योंकि हमें तो अपना जानने का मतलब है। दुनिया भर को जानने से अपना क्या होगा, तो इसलिए हम अपनी चर्चा करते हैं। तो ज्ञान को हम जानते हैं, परंतु वो कैसा किसको जाना, कौन सी ज्ञान की पर्याय हो रही है, उसके लिए कथन में पराश्रय लिया। आपने पूर्व पूछा था ना कि केवल ज्ञान में तो नहीं नहीं है, परंतु केवल ज्ञान संबंधी कथन हम कर रहे हैं। तो केवल ज्ञान किसको जानता है, अपने को ही जानता है, अपने केवल ज्ञान पर्याय को जानता है। समझे नहीं, तो उस पर्याय में किस संबंधी ज्ञान हो रहा है। अब ये कथन करने के लिए लोक और अलोक को हमें पकड़ना पड़ेगा कि इस संबंधी इन सारे ही पदार्थों के सारे ही गुणों को अनादि अनंत पर्यायों को उनके अविभाग प्रतिच्छेदों को ये एक साथ जानते हैं। तो ये सारा जानते हैं, इतना कथन करने के लिए उनका आधार लिया कथन करने के लिए, परंतु वो जानते ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो जान रहे उन सारे ही पदार्थों संबंधी जान उनको अपने से ज्ञान हो रहा है, उनकी अपनी योग्यता है। ज्ञान स्वयं अपने पर्याय में उन संबंधी ज्ञान कर लेता है। हमें भी ऐसा लगता है ना, सामने चीज है तो हम ज्ञान कर रहे हैं, सामने वो कोई बांसुरी बजा रहा है तो यहाँ हमें ज्ञान हो रहा है, परंतु वो तो इतने 15 साल की प्रैक्टिस करके अभी बजा रहा है, और ज्ञान को कितने समय लगे जानने के लिए। जिस समय वहाँ उसका परिणाम चल रहा है, उसी समय हमने वैसा ही ज्ञान का पर्याय, ज्ञान के पर्याय परिणाम उसी प्रकार से हुआ। कोई अच्छा महल देखते हैं तो वो महल बनने में तो 10-15 साल लगे, और हमें जानने में कितना समय लगा। तो तब महत्ता किसकी आती है, महल की, उसके पैसे की, यानी उसी में हमारा उलझन है, क्योंकि हमने क्या, वो ज्ञेय को ही हम पकड़ते हैं और ज्ञेय की मानता आती है। परंतु ये ज्ञान ने उसी समय इसको जान लिया, ये सारा चीज सारी चीजें, तो उसकी महत्ता हमें आज तक नहीं आई। जब पता चलता है कि ये सारा ज्ञान यहाँ से हो रहा है, तो अपनी महत्ता महानता भाषित होने लगती है, क्योंकि सर्वज्ञता, ये सर्वज्ञ का स्वरूप जब हम निश्चित करते हैं, वो सर्वज्ञ को जानने के लिए नहीं, परंतु ज्ञान का स्वभाव कैसा है उसको जानने के लिए। तो ज्ञान का स्वभाव जैसा उनका है वैसा ही मेरा भी है, क्योंकि मैं भी ज्ञान स्वभावी हूँ। क्योंकि ज्ञान होते हुए हमें प्रत्यक्ष भाषित होता है ना, कि हमें ज्ञान हो रहा है, शब्द का ज्ञान हो रहा है, अभी गर्मी पड़ी या ठंडी पड़ी उसका ज्ञान हो रहा है, या अपने को दुख हुआ या सुख हुआ उसका ज्ञान हो रहा है, किसी के प्रति द्वेष हुआ राग हुआ उसका ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान तो हो रहा है, तो ज्ञान हो रहा है ना, हमारे पास ज्ञान है इतना तो समझ में आया, इतना आया तो वो ज्ञान स्वभावी मैं हूँ। तो वो स्वभाव कैसा है उसका हमें आज तक पता नहीं था, तब हम सर्वज्ञ का स्वभाव देखते हैं। उन्होंने तो पर्याय में प्रकट किया है, वो कहाँ से हुआ, स्वभाव ही ऐसा है। तो हमारे पास ज्ञान है तो हमारा भी स्वभाव ऐसा ही है, इसका जब हम निर्णय कर लेते हैं तो महानता अभी ज्ञान की आने लगती है। पहले तो ज्ञेयों की महानता आती थी, अब ज्ञान की महानता होगी जब आएगी, तो उपयोग जो है अपना ज्ञान, तो जो अच्छा लगता है उसकी तरफ हम बार बार अपना उपयोग दौड़ता है। जब आत्म स्वभाव समझ में आया, ज्ञान स्वभाव से महान भाषित होने लगा, तो उपयोग अपने आप को पकड़ लेता है। क्योंकि फिर ऐसा बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधा करना, नाक के इधर आके लगाना, फिर ऐसा चिंतन करना, ओम ओम करना सीधे सीधे, ये सब बातें, ये तो खिजूर की बातें हैं, ये सारा सहज हो जाता है करने। तो यहाँ उसका उत्तर दे रहे, ये सारा हमने कल थोड़ी चर्चा की थी इसकी, उसके उत्तर में अभी ये सारे बता रहे कि वहाँ जो कथन था वो पर को जानते थे या नहीं जानते थे, ये जो कथन है वो कथन करने के लिए पर का नाम लिया, उतनी अपेक्षा है पर की, ख्याल है ना। देखो उस उक्त कथन के अनुसार जिस अपेक्षा से केवली भगवान मात्र अपने को जानते हैं पर को नहीं, यानी हम तुम भी सारे ही अपने ज्ञान को ही जानते हैं, किस अपेक्षा से, क्योंकि हम कोई ज्ञेय हमारे में नहीं आया, न ज्ञान कहीं अपने असंख्यात प्रदेशों से बाहर गया, जिसे दो द्रव्य एक में को छूते भी नहीं। आत्मा का पर द्रव्य में अभाव ही है, सारे अनंत अनंत द्रव्यों में अत्यंत अभाव है ना उसमें, तो ज्ञान कहीं गया ही नहीं, ना पर द्रव्य मुझ में आया। उस अपेक्षा वो अपने को ही जानते हैं पर को नहीं, उस अपेक्षा से अर्थात निश्चय नहीं से तो सम्य दृष्टि भी मात्र अपने को ही जानते हैं, पर को नहीं। मिथ्या दृष्टि को क्यों छोड़ा? उसको स्व क्या पर क्या कुछ पता ही नहीं है। हाँ, भेद ही नहीं है, कुछ सारा गड़बड़ घोटाले, इसलिए उसको यानी उसमें ज्ञान में तो उसके भी ज्ञान में ऐसा ही हो रहा है, परंतु उसको कुछ भाषित ही नहीं हो रहा है, स्व पर का भेद ही नहीं है उसको। अतः यदि आप सर्वज्ञ का पर को जानना असत्य मानेंगे, यानी वो जो क्या अज्ञानी दलील क्या कर रहा था, दलील कि वो व्यवहार से पर को जानते हैं, व्यवहार झूठा होता है इसलिए सर्वज्ञ पर को जानते ही नहीं, इसको तो कहते हैं कुतर्क, यानी वो गलत तर्क प्रस्तुत किया उसने। वहाँ तो पर को जानते नहीं, स्व को जानते हैं, वो अपेक्षा ध्यान में लेनी चाहिए थी कि ज्ञान तो ज्ञान में है, ज्ञान कभी पर में गया नहीं है, और ज्ञान तो अपने में ही लीन होकर अपने को ही जान रहा है, परंतु पर संबंधी ज्ञान हो रहा है ना वो, क्योंकि वह ज्ञान की पर्याय कैसी है, स्व पर प्रकाशक यानी स्व पर को जानने वाली जो ज्ञान पर्याय है उसी को मैं जान रहा हूँ, ये हुआ स्व को जानना। और वो पर संबंधी ज्ञान हो रहा है उस अपेक्षा से कथन करेंगे तो वो पर को जान रहा है। जैसे स्व में अपने में ही ना, प्रत्येक द्रव्य अपने में ही है, कभी पर में गया ही नहीं है, उस अपेक्षा वो ज्ञान भी कभी पर में गया ही नहीं है, अपने में ही रहा है, परंतु पर संबंधी का ज्ञान वो अपने में रहकर ही करता है। हमें लगता है गुलाब जामुन मुंह में रखेंगे तो हमें मीठा ज्ञान होता है, तो हमने गेय से ज्ञान होता हुआ माना। कल उदाहरण दिया था तो जो ज्वर आता है, फीवर होता है, तो चीजें कड़वी लगती है, मीठी चीजें भी कड़वी लगती है, तो गेय से ज्ञान होना है तो वो तो मीठा ही लगना चाहिए था। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान पर्याय अपने से ही होती है। तो उससे उत्तर में क्या कहते हैं कि यदि आप सर्वज्ञ का पर को जानना असत्य मानेंगे तो फिर सम्यक दृष्टि जाने का भी पर को जानना असत्य मानना होगा, जो कि प्रत्यक्ष सिद्ध है। हम भी अपने ज्ञान पर्याय को ही जानते हैं, तो क्या हम पर को जानते हैं कि नहीं जानते? तो हमें तो भाषित होता है कि हम सबको जानते हैं। आप यहाँ बैठे आपको जान रहे, यहाँ सामने पुस्तक है पुस्तक को जान रहे, यहाँ माइक नहीं होता तो आवाज धीमे आ रही है, माइक है तो आवाज, तो हम सारी चीजों को जान रहे। तो बिना पर को जानते ही हम राग द्वेष कर रहे हैं क्या? यदि हम पर को ही नहीं जानते हैं, ये राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? तो जिस अपेक्षा पर को जानते हैं उस अपेक्षा हम भी पर को जान रहे कि नहीं? आशा है ज्ञानियों का पर को जानना आपको भी अस्वीकृत न होगा। दूसरे ने और दूसरी दलील देते, दूसरे केवली यानी अन्य केवली ने, दूसरे ने दूसरा अभी पॉइंट बता रहे। केवली भगवान स्वयं को तन्मय होकर जानते हैं, आत्मा आत्मा में ही रहकर अपने को जान रहा है, परंतु पर जो जानते तो है, पर को जानते तो है, पर उनमें वे तन्मय नहीं होते, उसमें एकमेक नहीं होते। ज्ञान अपने असंख्यात प्रदेशों में से निकलकर कहीं बाहर नहीं जाता, इस कारण भी उनका पर को जानना व्यवहार कहा जाता है। यानी वो व्यवहार क्यों है, ऐसा क्यों? क्योंकि कथन के लिए पर का हमने अपेक्षा ली, इतना ही व्यवहार, इसीलिए उसको व्यवहार कहा। परमात्मा प्रकाश अध्याय एक गाथा 52 की टीका में इसकी चर्चा अत्यंत स्पष्ट है। कश्चित आह यानी कोई प्रश्न पूछता है, यदि व्यवहारे न लोकालोकम जानति तरही व्यवहार नयन सर्वज्ञत्वम न च निश्चय नयन इति। कल अपना प्रश्न पूछा था ना, देखो इसका अर्थ नीचे हिंदी में पढ़ेंगे। प्रश्न नीचे लिखा है, एक पैराग्राफ छोड़कर उसके नीचे हिंदी में इसका ट्रांसलेशन दिया है कि प्रश्न क्या पूछा कि यदि केवली भगवान व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं तो व्यवहार नय से ही उन्हें सर्वज्ञत्व भी हो, परंतु निश्चय नय से नहीं, क्योंकि अज्ञानी की कल्पना में से क्या क्या प्रश्न उठेंगे कि आप ऐसा कहते हो व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, तो वो व्यवहार नय से ही केवली भगवान है, निश्चय से वो केवली है नहीं, ऐसा कोई कहेगा तो उसके लिए ऊपर उत्तर देते हैं। परिहारम आह यानी उस शंका का परिहार करते हैं, हाँ यानी वो निश्चय से है नहीं, है सचमुच तो नहीं है, झूठे है, हाँ यानी उसको पर का जानने का नीचे से वहाँ तक रुका नहीं है। व्यवहार से पर को जानते ना तो वो व्यवहार से ही सर्वज्ञ है, ऐसा कह दिया। ये सारी अज्ञानी की दलीलें हैं। तो उसको उत्तर देते हैं, यथा स्वकीयम आत्मानम तन्मयत्वेन जानाति तथा परद्रव्यम तन्मयत्वेन न जानाति। नीचे देखो, जिस प्रकार तन्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते हैं, तन्मय होकर ने मैं उस रूप हूँ ऐसा मानकर, यानी मैं स्वयं जीव हूँ ऐसा मानकर अपने को जान रहे, परंतु पर को कैसा जान रहे, ये मैं नहीं हूँ ऐसा जान रहे। जब हम इसको सामने वाली चीज चिमटा एक क्लिप है इसको जान रहे, तो ये मैं हूँ ऐसा जान रहे हैं कि कोई पर चीज है ऐसा जान रहे, पर चीज है ऐसा जान रहे ना इसको। वैसे ही सर्वज्ञ अपने को मैं रूप से जानते हैं और पर को पर रूप से जानते हैं। तो वहाँ जानते नहीं का कहाँ सवाल आया, क्या लाया? देखो नीचे लिखा है ना कि जिस प्रकार तन्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते हैं, उसी प्रकार परद्रव्य को तन्मय, तन्मय शब्द आया तत् और मय, त का न हो जाता है, तत्मय यानी उस रूप, पर रूप से उस पर जो है उसको स्वरूप से नहीं जान रहे, पर रूप से जान रहे, पर को पर रूप से जान रहे, स्व को स्वरूप से जान रहे। तो परद्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते, इस कारण व्यवहार कहा गया है। ऊपर लिखा ना, तेन कारणेन व्यवहारो भण्यते न च परिज्ञान अभावात्, यानी ज्ञान के अभाव से नहीं कहा, उनका ज्ञान ही नहीं होता ऐसा नहीं, वो पर को तन्मय होकर नहीं जानते इसलिए उसको व्यवहार कहा, न कि उनके परिज्ञान का ही अभाव होने के कारण, यानी उन संबंधी ज्ञान ही होता नहीं ऐसा नहीं है। ज्ञान होता है तो कैसा ज्ञान होता है, यह मैं नहीं हूँ ऐसा ज्ञान होता है, और यह जो मैं हूँ यानी जो स्वयं है वह केवल ज्ञानी, उनको यह मैं हूँ करके जानते हैं और पर को पर रूप से जानते हैं। वो ज्ञान तो अपने ही में ही हो रहा है, तब पर संबंधी का ज्ञान भी अपने में हो रहा है, तो वो जानते ये पर संबंधी ज्ञान हो रहा है और अपने अनंत गुण पर्याय ख्याल में आ रही है, उसको ये मेरी है ऐसा जान रहे, अपनी है ऐसे जानते हैं, परिपूर्ण ज्ञान सब ओर से। यदि पुनः हाँ, पर्यावरण दिया था ना, पर्यावरण आजू बाजू का सभोताल सारा सभी ओर से। यदि पुनः ऊपर की ओर तीसरी लाइन संस्कृत वाले, यदि पुनः निश्चयेन स्वद्रव्यवत् तन्मयो भूत्वा परद्रव्यम जानाति तर्हि परकीय सुख दुख राग द्वेष परिज्ञातो सुखी दुखी रागी द्वेषी च स्यात् इति महत् दूषणं प्राप्नोति इति। सामने आता है ना कुछ संस्कृत, कि परद्रव्य को भी अगर तन्मय होकर जानेंगे तो क्या आफत होगी, परद्रव्य के जो सुख दुख राग द्वेष है उसको भी वो जानेंगे स्वयं रूप से तन्मय होकर जानेंगे, तो उनको भी राग द्वेष और सुख दुख का प्रसंग होगा, केवली को भी। क्या लिखते हैं नीचे देखो, कि यदि स्वद्रव्य की भांति परद्रव्य को भी निश्चय से तन्मय होकर जानते तो परकीय सुख दुख को जानने से स्वयं सुखी दुखी और परकीय राग द्वेष को जानने से स्वयं रागी द्वेषी हो गए होते और इस प्रकार महत् दूषण प्राप्त होता। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट मरीज के लक्षणों से पता चलता है इसको पेट में बहुत दर्द है, तो कैसा मेरे पेट में दर्द है ऐसा जानता है कि उसके पेट में, तो उसकी ये जानते हुए उसको अपने पेट में उतना दर्द महसूस होने लगा तो वो तो खुद का इलाज करने बैठ जाएगा, वो पर का इलाज भी नहीं करेगा। तो पेशेंट को तो जानना नहीं इसको इतनी बीमारी है, इसको इतना दर्द हो रहा है, इसको दर्द हो रहा है इसका वो अनुमान लगा रहे कि नहीं, उसके लक्षण उसके मुंह पर जो रेखा है या उसको कितना थोड़ा दबाए तो एकदम ऐसा करता है, तो उसके ऊपर से उसको एहसास है कि इसके इतना दर्द हो रहा है, यानी वो झुटमिट तो नहीं कह रहा, तो इसका उसको पक्का खातरी है, परंतु वो अपने को दर्द हो रहा है ऐसा जान रहा है कि वो पर है ऐसा जानता है। वैसे केवली भगवान ये सारे ही पदार्थों को पर है इसी तरह से जान रहे हैं। तार्किक चक्र चूड़ामणि यानी जो तर्क जो ज्ञान है, तो तर्क अनुमान आदि सारे भेद है ना, आपने ज्ञान के पढ़े स्मृति तर्क प्रतिविज्ञान हो गए। तो ये जो तार्किक चक्र चूड़ामणि यानी लॉजिक न्याय शास्त्र के विद्वान ऐसे आचार्य समन्त भद्र रत्नकरण शावकाचार्य के मंगलाचरण में, श्री वर्धमान भगवान के केवल ज्ञान में अलोकाकाश सहित तीनों लोकों के समस्त पदार्थों के स्पष्ट झलकने की चर्चा इस प्रकार करते हैं। यानी मंगलाचरण में ही उन्होंने सबसे पहले वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर लिया और उसी में उन्होंने क्या कहा कि नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। यानी उसका अर्थ क्या है कि जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में, यहाँ दर्पण की उपमा दी है, दर्पण हमारे तो रोज का है ना, मालूम है, तो हमें उसके साथ कंपेयर करते हैं कि केवल ज्ञान रूपी दर्पण में अलोकाकाश सहित तीन लोग झलकते हैं। अलोकाकाश को छोड़ा नहीं है, वे भी उनके ज्ञान में झलकता है पूरा अलोकाकाश। और जिन्होंने ज्ञानावरण आदि पाप रूपी मैल को धो डाला है, निर्धूत धो डाला है, क्या कलिल कहाँ का आत्मने आत्मा का, यानी पाप रूपी मैल को धो डाला है, उन वर्धमान भगवान को नमस्कार हो। ये मराठी में हम बचपन में कहते थे अलोका सहित तीन लोका से जान से असे दर्पण आशा रखे ज्ञान जान से अपापी स्वरूपी अशा वर्धमान जिनाते नमस्कार भावे करुणा। उसी का रत्नगण सावकाचार्य का ही वो ट्रांसलेशन है। ख्याल में आता है पर को पर रूप से जानते हैं, तन्मय होकर नहीं जानते, उसको कहते हैं कि व्यवहार से जानते हैं। पर को जानते नहीं ऐसा कहना वो सर्वज्ञ का अवर्णवाद है, यानी देव का स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं आता। ऐसे झूठे मूठे जो कुतर्क होते हैं प्रस्तुत होने से उनका तो अपना बुरा होता ही है, साथ साथ उनके ऊपर श्रद्धा, क्योंकि अज्ञानी जन भोले जन होते हैं तो क्या ये भी कुछ बात करते वो भी एक बात करते, दोनों पंडित है हम किसका कथ माने, क्योंकि अपना निर्णय है नहीं। वो मुरादाबादी लोटा के उदाहरण देते ना, यहाँ से ऐसा टप्पड़ मार तो ऐसा लुढ़क गया, और नीचे से ऐसा होता है उसको कोई शेप ही नहीं सीधा, नीचे से राउंड है ना बर्तन कोई ऐसा, तो यहाँ से टप्पड़ मारो ऐसा होगा, वहाँ टप्पड़ मारो ऐसा होगा, अपना निर्णय नहीं है। हाँ, बिना पेंगे का लोटा कहते, हाँ बेस उसका ऐसा राउंड रहता है। तो हमें तो ये तत्वों का ज्ञान इसलिए करना है कि हम खुद निर्णय कर सके। हमारे बाप दादे भगवान को यानी तीर्थंकरों को नमस्कार करते जैनी थे, इसलिए हम जैनी बनने से उनको नमस्कार करने से उसको तो गृहित मिथ्या तो कहा है रत्नगण शावकाचार्य ने। सच्चे वितराग भगवान को नमस्कार क्यों न करता हो, क्यों करते हो, हमारे माँ बाप भी करते थे, निर्णय बिना कर रहे ना तो वो भी सम्यक से नहीं हो सकता, गृहित मिथ्या भी कहा उनको, कड़क भाषा है, क्योंकि निर्णय नहीं है। जैसे मुसलमान वो अपने कुल देवता को पूछते हैं, हिंदू वो अपने कुल देवता को पूछते हैं, और जो है वो अपने अपने कुल देवताओं को पूछते हैं, वैसे हम भी वितराग सर्वज्ञ को पूछते हैं, क्यों, वो हमारे कुल देवता ऐसा मानकर, वो गृहित मिथ्या तो है। ख्याल आता है कुछ? हाँ देखो, ये पहले सबसे पहले में पहले देव गुरु शास्त्र का निर्णय बहुत महत्व का है, उनके लिए नहीं, दुनिया में क्या चलता है उसके लिए नहीं, अपनी मान्यता सही करने के लिए, और बिना उस मान्यता को हम अपना स्वभाव नहीं जान सकते। इस प्रकार जैन दर्शन के सर्वमान्य दिग्गज आचार्य श्री कुंडकुंद कार्तिकेय समन्त भद्र उमा स्वामी, उमा स्वामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है मालूम है? हाँ पिनांग, हाँ 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 शाम को चलता है, कौन सा चक्रवर्ती के बराबर, पूज्यपाद वीरसेन अमृत चंद्र रविसेन आदि अनेक आचार्यों के प्रबल प्रमाणों से सर्वज्ञता और त्रिकालज्ञता सहस्थित है। त्रिकालज्ञता शब्द क्यों लाला? त्रिकाल यानी भूतकाल वर्तमान और भविष्य, कि जिन्होंने सर्वज्ञ के ज्ञान पर ही शंका उठाई कि भूतकाल को तो जानते हैं परंतु भविष्य को नहीं जानते, इसलिए त्रिकालज्ञ शब्द फिर डालना पड़ा। उपर्युक्त अनेक प्रमाण देने के बाद, देखिए कोई भी आचार्य भी है ना वो तो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये कुंद आचार्य भी ऐसे कहते हैं, महावीर भगवान ने इसे बताया, कोई ऐसा नहीं कहे ये मैं कह रहा हूँ, कोई भी आचार्य नहीं कहेगा इसे। और क्योंकि ये सारा जिनवानी में से आगम में से ये सारे प्रमाण ढूंढ ढूंढ कर यहाँ लिखे, क्योंकि कोई कहेगा ना ये आपने नई बात निकाली है, स्वामी जी को तो ऐसा बहुत विरोध हुआ, ये आप कहाँ से लाए क्रमबद्ध करिया। तो ये सारे ही अप्रमाणों को सामने प्रस्तुत किया कि अपनी जिनवानी में ये प्रमाण सारे भरे पड़े हुए। उपर्युक्त अनेक प्रमाण देने के बाद भी लोगों का आग्रह रहता है कि आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए कि क्रमबद्ध पर्याय की बात कौन से शास्त्र में है। फिर वही, ये कौन से शास्त्र में है? पर मेरा कहना है, ये भालिल जी कहते, मेरा कहना है कि ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं है। यानी सारा ही जिनागम क्रमबद्ध पर्याय की बातों से भरा पड़ा है, चारों ही अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, सारे पूजाएं, भक्ति, भजन, जो कुछ उठाओ आप जिनागम का, उसमें चारों ही में क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है। चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों में, यहाँ तक कि पूजन पाठ में भी कदम कदम पर क्रमबद्ध पर्याय का स्वर मुखरित होता सुनाई देता है। मुखरित होना यानी गुंजित होना। हाँ, ध्वनित होना, ये इसमें आता है ना, नीचे भी लिखा है चंद्र प्रभु पूजन, कवि वृंदावन जी ने लिखी है, उसकी जयमाला में आता है कि भामंडल की द्वितीय जगमगात भवि देखत निज भव सात सात। यानी समोसरण का वर्णन करते हैं वहाँ, तो समोसरण में जो भगवान विराजमान है और उनके जो भामंडल है पीछे, वैसा भामंडल रहता है ना भगवान के पीछे, उसकी जो द्युति है, उसका जो तेज है, वो जगमग जो करता है, तो भवि देखत निज भव सात सात, उसमें अपने साथ साथ भव देखते हैं, वहाँ जाने वाले लोगों को उनके अपने साथ साथ भव दिखते हैं। कौन से साथ मालूम है? तीन पहले के, तीन आगे के और एक वर्तमान का। तो ऐसा कोई जीव होगा कि उसको कम दिखते होंगे? कोई पापी होगा तो कम दिखेंगे क्या? हाँ, उसको कितने दिखेंगे? एक ही देखेगा ना। एक वर्तमान और पीछे के चार दिखेंगे, जो उसी भव में मोक्ष जाने वाला है। तो उसको भगवान के वो महामंडल में कितने भव दिखेंगे? पहले के जो तीन बीत चुके हैं और एक वर्तमान का, क्योंकि उसी भव में आगे तो भव ही नहीं है, तो जिसको सात दिखे वो अच्छा है। तो हमें तो, हाँ, मुझे आगामी भव कौन सा मिलेगा, क्या जानना चाहते? अरे मेरा आगामी भव कौन सा होगा? तो ऐसा किसी में, अरे मेरा आगामी भव नहीं होगा तो अच्छा है, ऐसा ऐसा नहीं लगता। हाँ, देखो, हाँ, भवी लिखा है ना, भव्य जीव ही जाएंगे ना, अभव्य जो है वो तीव्र गृहित मिथ्या दृष्टि, वो वहाँ तक जाएंगे नहीं, क्योंकि समोसरण में अन्य भी बातें बहुत होती है, वहाँ नाटकशाला ही चलती है, अन्य अन्य चीजें रहती है, जैसे यहाँ कोई ये लगती है ना जत्रा, यात्री जत्रा क्या कहते हैं, मेला, मेला, ये आपने भी यहाँ गए थे ना, कौन किसमें? बाहुबली बमटेश्वर, तो वहाँ भी उनका मस्तकाभिषेक होता है, तो उस समय तो उस समय क्या होता है, वहाँ तो बहुत खिलौने की दुकान है, ऐसा वैसा बहुत सारी खाने की मिठाइयाँ है, कोई कपड़े वगैरह ये सब खरीदने के लिए बहुत सारा माहौल है, तो बहुत लोग भीड़ करके जाते हैं। कहाँ गए थे वो? मस्तकाभिषेक देखने के लिए गए थे। तो क्या क्या गए? हमने ये खरीदा, वो खरीदा, वो ऐसा था, वैसा था, वैसा था, यानी वो उसी में उलझेंगे, वहाँ भगवान के पास थोड़े ही लोग पहुँच जाएंगे। जयपुर के शिविर में भी होता है, क्या देखा? वो थिएटर देखा, ये वो देखा, उधर गया है, वो मेला देखा। हाँ, वो निर्णय करना था ना, सही है कि गलत है। चलो, तो तीर्थंकर भगवान के प्रभा मंडल में, प्रभा मंडल कहो या प्रभा मंडल, वो प्रभा का वलय है ना उनके पीछे, प्रभा है तेज, भव्य जीव को अपने अपने सात सात भव दिखाई देते हैं। उन सात भवों में तीन भूतकाल के, तीन भविष्य के एवं एक वर्तमान भव दिखाई देता है। इसके अनुसार प्रत्येक भव्य के कम से कम भविष्य के तीन भव तो निश्चित रहती ही है, अन्यथा वे दिखाई कैसे देते। तीन भव की आयु एक साथ बंध नहीं सकती। इनको क्या कहना चाहते कि तीन भवों की तो निश्चितता वहाँ से पता चलती है ना, अनंत भव निश्चित होते हर एक के, परंतु अभी जो भव्य है तो ये इन्हें वो क्या सिद्ध करने चाहते कि आगामी एक भव तो निश्चित है, दो भव तो निश्चित है, तीन भव तो निश्चित है। यहाँ से अभी बात उठाएंगे, फिर कहेंगे आदिनाथ ने तो कितने भवों की बात बताई थी हमारी चीज, अनंत गए थे बीच में, क्योंकि इतना कोड़ा कोड़ी सागर का, एक कोड़ा कोड़ी सागर के करीब इतना जो काल था, 2000 सागर तो त्रस्त ही होती है, तो त्रस्त पूरा करके कहाँ गया होगा, होती निगोद में, तो निगोद में तो कितना अनंत अंतर्मूर्त में इतने सारे भव होते आते हैं, निगोद के या एकेंद्रिय के जो है सूक्ष्म जीव मालूम है एक अंतर्मूर्त में कितने होते हैं, याद है क्या, भूल गए सर, 66,336 इसमें वो अपर्याप्त, अपर्याप्त में तो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे अपर्याप्त आ गए, और अकेले एकेंद्रिय के अपर्याप्त भव कितने हैं गिनाने हैं तो 66,132 एक अंतर्मूर्त में। वो अंतर्मूर्त वाला यानी कितना छोटा होता है, वो बड़ा से बड़ा अंतर्मूर्त भी वो 48 मिनट में एक समय कम वाला, इतने 48 मिनटों में वो 66,132 एकेंद्रिय के भव हुए, उसमें और कुछ डाल दो तो 336 होते, वो द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुर्द्रिय पंचेंद्रिय के मिला के हो जाते, यानी उन्होंने कितना काल अनंत हो गए होंगे ना उनके इसमें, इसके बीच में। तो ये सारों को उन्होंने जाना था कि नहीं जाना था, ये खाली अकेले मारीच का भव और फिर बाद में महावीर का इतना ही ख्याल में है कि वो बीच के सारे ही उन्होंने जाने सब, तो यानी वो क्या कहना चाहते, वो क्रमबद्ध जो है वो निश्चित रहता है ना, ये पर्याय सारी निश्चित है तभी तो जानी उन्होंने। सर्वज्ञ पर भरोसा नहीं किया, मैं दूसरा तीर्थंकर होके दिखाऊंगा ऐसा मानकर वो वहाँ से बाहर पड़ा, मुनि दीक्षा ली हुई थी उसका त्याग कर दिया और फिर उल्टे खोटे रास्ते पर चला गया। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि आयु कर्म बन जाने से भव निश्चित हो गए थे। आयु कर्म तो इसका अर्थ क्या होता है, आयु कर्म तो एक ही भव का बनता है, अभी हम आयु बांधेंगे तो अगले एक ही भव का बांधेंगे, अगले दो तीन भव का तो नहीं बांधेंगे, तो आयु ही नहीं बंधी थी तो आगे के भव कैसे जाने, कैसे वहाँ भामंडल में भी कैसे दिखाई दे, भगवान ने तो बोला नहीं, इसने तो भामंडल में उसके ख्याल में आ गए, यानी उसके ज्ञान में भामंडल की तरफ देखने से उसके ज्ञान में आए कि मेरे भव इसी बात है ना, वो उसकी अपनी ज्ञान की पर्याय तो कैसे आए, क्योंकि अभी आयु तो बंधी नहीं थी, आयु तो एक ही भव की निश्चित होती है, यानी आयु समझो बांधी हो किसी ने तो एट ए टाइम इस भव में आगामी एक भव की आयु बनती है, अगले भव में जाएगा उसका जो आयु का जो त्रिभाग में वगैरह बनना है तब वो उसके अगले आयु बांधेगा, यानी ऐसा कोई कर्म तो अंदर पड़ा नहीं कि उसकी तरफ देखकर भगवान ने बताया होगा या इसने जाना होगा कि ये आगामी इतने आयु में मैंने बांधी है, यहाँ की दलील ख्याल में आती ना, कोई अवधि ज्ञानी भी उसकी आयु की तरफ देखकर अगर कहेगा हाँ इसने ये अभी देव की आयु बांधी है तो एक भव की तो बता सकेंगे, पर अन्य जो बांधी ही नहीं उसको कहाँ से बताएंगे, उसके कर्म अंदर पड़े ही नहीं है, अंदर जो आयु बांधता है उसके कर्म अंदर है, तो कर्म संबंधी जिसको अवधि ज्ञान है तो वो जान सकेंगे, वो अवधि ज्ञानी मुनि बताती ना, अरे राजा अभी तेरी 60 दिन की आयु बाकी है, ऐसे ऐसा होने वाला है, तो ऐसा वो बहुत सारी स्टोरी आती ना, तो वो कर्म संबंधी का ज्ञान हो जाता है, अवधि ज्ञान से जान लेते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि आयु कर्म तो एक भव का ही निश्चित होता है, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वे पहले से ही निश्चित रहते हैं, होते नहीं, वे यानी भव, भव की बात चल रही है ना, कि वो भव जो है वो पहले से ही निश्चित है, जो भव है वैसे उस जीव को परिणाम होंगे, और उसी परिणामों के साथ वो आयु बंद करेगा। ये इन्होंने जाना है पहले, वो पराधीन नहीं हुआ है, भगवान ने जाना है इसलिए हम पराधीन नहीं हुए। हम अभी अपनी इच्छा से यहाँ तक आए कि भगवान ने जाना था इसलिए आए। हाँ दीपाली, आज आप स्वयं आई सुबह यहाँ क्रमबद्ध पर्याय सुनने के लिए, तो भगवान ने जाना था इसलिए आपको आना पड़ा कि आप अपनी इच्छा से अपने पुरुषार्थ से आई हो यहाँ? अपनी इच्छा कुछ पुरुषार्थ से आए, अभी तो इतना ही कहेंगे अपनी इच्छा से आए अपने पुरुषार्थ से आए, तो उसका भी जो कारण है वो तो बाद में देखेंगे। तो अभी तो हमें निश्चित है ना कि जो जो हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक वो अपने विशिष्ट पुरुषार्थ से कर रहे हैं, भला वो सुलटा हो उल्टा हो वो तो अलग बात है, परंतु हर कार्य जो है वो अपने अपने पुरुषार्थ पूर्वक अपने अपने उसमें सारे पांचों समवाय लगा, वो तो सारा क्रमबद्ध है। ये क्रमबद्ध हो रहा है परंतु उसको सर्वज्ञ ने पहले जान लिया है, इसलिए पराधीनता नहीं आती है। सवाल हमारा यहीं पर होता है, जब देखा है सर्वज्ञ होना तभी होगा, परंतु सर्वज्ञ ने ये भी देखा है कि किस पुरुषार्थ पूर्वक होगा, किस निमित्त से होगा, उसके पहले वाली पर्याय कौन सी होगी, ये सारा उन्होंने जान लिया है। देखो ये अभी दलील देते हैं ना, सारे ही शास्त्र जो भरे पड़े हैं क्रमबद्ध पर्याय से, अब ये इसकी चर्चा यहाँ करेंगे। पहले तो यहाँ ये चंद्र प्रभु की पूजन की जयमाला बताए भामंडल वाले, अब यहाँ कहते कि प्रथमान योग के सभी शास्त्र भविष्य की निश्चित घोषणाओं से भरे पड़े हैं। भगवान नेमिनाथ ने द्वारका जलने की घोषणा 12 वर्ष पूर्व कर दी थी। समाचार में किसी के मन में प्रश्न उठा कि ये द्वारका ऐसी सोने की इतनी सुंदर नगरी है तो उसका क्या है, कहाँ कब तक रहेगी, तो उस प्रश्न का उत्तर क्या मिला, 12 साल बाद ये जलेगी, उसका निमित्त भी बता दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि किस निमित्त से कैसे और कब, सब कुछ था ना, किस निमित्त से कैसे, कैसे में उसके पहले का सारा ही पर्याय उनका सिलसिला, वो राजकुमार जाएंगे, वो ऐसे पत्थर मारेंगे, विपन को क्रोध आएगा, उनको वो तेजस्वी निकलेगा उससे जलेगी, ये सारा ही, और कोई नहीं बचेगा, वो समुद्र का पानी भी डालोगे वो भी वो ज्यादा आग हो जाएगी, इसमें से खाली कृष्ण और बलराम वो दो बचेंगे, उनके माता पिता भी जल जाएंगे, ये सारा ही उन्होंने बता दिया। और कब यह भी बता दिया, यह सब कुछ घटित होगा अनेक उपायों के बाद भी वह सब कुछ उसी रूप में घटित हुआ, यानी सुनकर उसमें कुछ चेंज करना चाहा अनेकों ने, वो यादव ने वो मध्यबंदी सारा नशाबंदी कर दी, ये सारा जो जो इंतजाम करना था उसको प्रिवेंशन के लिए सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए, फिर भी वो प्रिवेंटिव मेजर्स ही उसमें हेल्पफुल साबित हो गए। तो हाँ एक बात अवश्य है कि सुनने वाले लोगों में उक्त बात की प्रतिक्रिया अपने अपने भवितव्य अनुसार भिन्न भिन्न हुई। एक ही बात सुनी सबने, क्या द्वारका जलेगी 12 साल के बाद, और वो सुनकर जिसका जैसा भवितव्य था वैसी उसकी बुद्धि हुई, वैसे संस्कृत में कहते ना तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता, यानी बुद्धि भी वैसी होती है जैसा होने वाला भवितव्य है। ऐसे भी हम कहे कहावत तो है ना, विनाश काल है विपरीत बुद्धि, ये अपना ऐसे ही जाना ही था, पैसे का इतना लॉस होना ही था, अरे मेरी कैसी बुद्धि फिर गई है, ये सियाना मानुष की भी बुद्धि विपरीत हो जाती है, क्योंकि वैसा उसका संयोग में से वो वियोग रूप हो जा रहा था, पता चलता है एक्सपीरियंस है तो ऐसा क्यों किया, पता नहीं क्या मेरे भ्रम हो गया तो ये हो गया मेरे हाथ, कहते ना हमेशा। जिनका भविष्य अच्छा था उन्हें उक्त बात सुनकर वैराग्य हो गया, बहुतों ने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण की, अब जो अपने अपने भवितव्य अनुसार जो अधिक पुरुषार्थी जीव सारे वैराग्य का कारण बनाया, तो उसमें से अरे ये क्या ऐसा, इतनी नगरी जो देवों ने बनाई हुई सुवर्ण की नगरी है और उसका ऐसा परिणाम, अरे कैसी संसार की विचित्रता, जानकर उसमें वैराग्य का कारण बनाकर मुनि दीक्षा ली उन्होंने। अनेकों ने अनुरत धारण किए, अनेक सम्यक की बने, पर जिनकी अधोगति होनी थी उन्हें भगवान की बात को टालने का विकल्प आया। देखो कृष्ण के पुत्र तो दीक्षा लेकर मोक्ष चले गए, और ये क्या, जिनको अधोगति होनी थी उन्हें भगवान की बात को टालने का विकल्प आया। हाँ, वे इस प्रयत्न में जुट गए कि देखे द्वारका कैसी जलती है। उन्होंने अपना सारा पुरुषार्थ मानो भगवान की बात को झूठा सिद्ध करने में ही लगा दिया। उनका भगवान पर विश्वास था कि नहीं था? नहीं विश्वास होता तो वो प्रयत्न भी नहीं करते। मगर ऐसा विश्वास नहीं था, सर्वज्ञ का स्वरूप बराबर भाषित नहीं हो रहा था। यानी ऐसा तो अरे भगवान ने कहा है तो अरे होगा, परंतु हम टाल सकते हैं। यानी वैसा ठीक होता ही है, इस तरह से नहीं जाना। जैसे भविष्य इसके पास जाते ना, ये चलता नहीं, ज्योतिषी के पास जाते क्या होने वाला, ऐसे ऐसा होने वाला, क्या करूँ, ये मंत्र जपो, ये ऐसा पर्ची ले लो, ये विभूति ले लो, ये तावीज बांधो, ये ऐसा ऐसा करो, तुम्हारा संकट टल जाएगा। अरे टल जाता है तो ये क्यों करना? जब टल जाता तो ये तुम्हारी कैसी भविष्यवाणी? तो ये तो लोगों को उल्लू, ये लोग भी उल्लू बनते ना, अपने जाके उसके पैर में पड़ गए कि हमारा अपना ज्योतिष बताओ। तो भले कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है तो हमें तो संयोगों से ही वेद ज्ञान करना है। संयोगों में जो हमें अइष्ट अनिष्टता है उसी को हमको टालना है। तो अच्छे संयोगों से वेद ज्ञान करना अच्छा कि बुरे से अच्छा? हम वेद ज्ञान तो करना चाहते थे, उसके पहले क्या करना चाहते थे? अच्छे अच्छे संयोग जुटाना चाहते है ना, फिर उनसे वेद ज्ञान करेंगे क्यों? जिसको अपने से धीमे ही जानना है तो संयोग की तरफ देखे क्यों? आवश्यकता नहीं, फिर भी वो इतनी वो टेव पड़ी है, कुटेव कहते हैं उसको, अनादि से परिग्रह की और संयोग की ममता की, कि वो उसको जुटाना चाहते हैं। अरे अभी थोड़े संयोग से जो हट नहीं सकता, और क्या कहते हैं, नहीं नहीं पुण्य करूंगा, देव में जाएंगे, वहां तो संयोग और अच्छे बढ़ेंगे। ये अभी बुरे संयोग है, उनसे दृष्टि नहीं हटा सकता, तो अच्छे संयोगों में छोड़ना चाहेगा वो? बहुतों ने हाँ बात जानने का विकल्प आए, वे इस प्रयत्न में जुड़ गए कि कैसे द्वारका जलती है। उन्होंने अपना सारा पुरुषार्थ मानो भगवान की बात को झूठा करने में लगा दिया, पर भगवान ने तो जैसा देखा जाना था कह दिया था, वे उसके कर्ता धर्ता तो थे ही नहीं। भगवान ने कुछ ऐसा चाहा भी नहीं था और उन्होंने उसमें कुछ किया भी नहीं है। वो सारा जैसे होना था वैसे उन्होंने जाना मात्र था और बताया था, इतना ही। भगवान की वाणी में तो द्वारका जलने के उपादान के साथ साथ निमित्तों का भी स्पष्ट उल्लेख था, पर निमित्ताधीन दृष्टि वालों का ध्यान उपादान की ओर तो गया ही नहीं। देखो निमित्त बता दिए ना, ये इस निमित्त से होगा, चलो निमित्त को होगा, परंतु कार्य तो निज शक्ति से होता है, इस पर ध्यान नहीं गया। वे तो निमित्तों को हटाने में लग गए, अभी उपादान को कैसे हटाए? जिस उस द्रव्य में अपनी अपनी एक एक पर्याय सुनिश्चित है, उसमें जैसे पत्थर में एक उत्कीर्ण करते ना, वैसे है अपने अपने द्रव्य में, अपनी सारे ही पर्याय यहाँ उत्कीर्ण है, अभी कैसे मिटाएंगे उसको? तो ये जो उपादान में जो है उसकी तरफ वो निमित्त बताया ना, तो चलो इस निमित्त को हटाएंगे तो ये भी चला जाएगा। तो ना निमित्त हटेगा ना उपादान की उस योग्यता हटेगी, कुछ नहीं हटने वाला। पर निमित्ताधीन दृष्टि वालों का ध्यान उपादान की ओर तो गया ही नहीं, वे तो निमित्तों को हटाने में लग गए और अपनी दृष्टि में निमित्तों को हटाकर अपने को सुरक्षित भी समझने लगे। निमित्त हटा दिए ना, चलो अभी कुछ निश्चिंत हो गए। ये साइंटिस्ट भी कुछ आगाही करते ना, ये ऐसा ऐसा होगा होगा, तो उसको हटाने के लिए सारे, परंतु उसमें तो क्या गणित के आधार से वो करते कि ये ग्रह की ऐसी होगी और उसको ये हटाएंगे तो उसका वो टाल भी देते हैं और मानते हैं हमने हटाया। तो सर्वज्ञ ने जाना होगा ना कि ऐसे ऐसे गति थी, परंतु उसके ऐसे ऐसे निमित्तों से हटने भी वाला था। वो सुरक्षित समझने लगे, परंतु क्या हुआ? वो कहते निमित्ताधीन दृष्टि वालों को भगवान की सर्वज्ञता पर पूरा भरोसा नहीं था। भरोसा था क्योंकि उन्होंने बताया, इसलिए माना तो सही कि द्वारका जलेगी, परंतु कैसा माना? कि अगर हम जुड़ गए, हम अभी बराबर प्रयत्न करें तो उसको बचा सकते हैं। اس طرح سے انہیں پورا بھروسہ نہیں تھا. نمتادھین درشٹی والوں کو بھگوان کی سروجنتا پر پورا بھروسہ نہیں ہوتا, ان کی درشٹی چنچل بنی رہتی ہے. یہ بات نہیں کہ انہیں بھگوان کی بات پر وشواس ہی نہ تھا, آئی نا بات. یدی وشواس نہیں ہوتا تو پھر وہ ڈرتے کیوں, گھبراتے کیوں؟ بالکل وشواس نہیں ہوتا تو پریتن بھی نہیں کرتے, اسے ٹالنے کا اسفل پریتن ہی کیوں کرتے؟ انہیں وشواس تو تھا پر پکا وشواس نہیں تھا, بھروسہ تو تھا پرنتو پورا بھروسہ نہیں تھا. ہم کہتے تو ہے کہ ایک دروے دوسرا دروے کا نہیں کرتا, پرنتو اندر کچھ لگتا ہے نا کہ ہم اس کو کر تو دے پکا پورا. یوں ہی ڈھلمل شردھا تھی. جن کی ہونہار کھوٹی ہوتی ہے ان کی شردھا سروجنیہ پر بھی نہیں ٹکتی. انڈے کی تو بات ہی چھوڑو, سروجنیہ پر بھی ان کا سروجنیہ کا بھی صحیح سوروپ نہیں خبر پڑتا ہے ان کو, ان کے اوپر بھی شردھا نہیں ہے. جنوانی میں جو لکھا ہے وہ تو ساری سروجنیہ کی وانی ہے. آچاریوں نے جن کے پنچ مہاورت کے دھارن کرتا ہے, ستیہ مہاورت کو جنہوں نے پالن کرنا ہے, پرتیجنا ہے جن کی, وہ جب لکھتے ہیں ساری باتیں تو وہ 100% سچ ہے, پرنتو ہم ان پر وشواس نہیں کرتے. دیکھو آچاریوں کی وانی ہمارے من میں کتنی گونجتی ہے, اور کوئی ہمیں تھوڑا سا کچھ کھوٹا کہے, سانس بہو کو کچھ بولے, یا کوئی دیرانی جیٹھانی میں کچھ چرچا ہو جائے, اور کوئی ایسی غلط چیز کسی کو آپس میں, یا کوئی سامنے والے نے مجھے گالی دی یا بازو والے نے کچھ کہا, تو وہ ہم دن بھر ہم کتنا ہمارے من میں وہ چلتا رہتا ہے, اس نے ایسا کہا, اس نے ایسا کہا, اس نے ایسا کہا, اور اس پر وہ تو ہمارا جھگڑا تو 5 منٹ کا چلا, پرنتو اس کے اوپر ہم 5-5 دن 50-50 دن یا سالوں تک وہی بات ہمارے من میں دہراتے رہتے. اور آچاریہ جب کہتے ارے تو سوئم بھگوان ہے, ایسا سروجنیہ سوروپ تو ہے, وہ بات کتنے سمے تک رہتی من میں؟ ہاں سنتے سنتے تو اچھا لگتا ہے, تو بعد میں اس کا ایسا اپنا ہی مہیما آتی ہے اندر سے, بار بار وہی بات دہراتے ہیں ہم اپنے من میں, تو اپنا دیکھنا کیا چلتا ہے اپنے من میں, کون سی چیز اپنے من میں کھٹکتی رہتی ہے, وہی بار بار یاد آتی ہے. تو ان کی شردھا سروجنیہ پر بھی نہیں ٹکتی. کیا لکھا ہے, جن سروجنیہ تو سب سے جو سب کچھ جاننے والا ہے اس پر ہی شردھا, ان پر بھی نہیں شردھا, تو اور کس پر نہیں ہے؟ ہاں بتاؤ. اپنے آپ پر بھی نہیں. وہ جو سروجنیہ کی جو وانی ہے ان میں جو جو باتیں ساری آئے, ایک دروے دوسرے دروے کا نہیں کرتا ہے, یہ سارا گرو پر بھی, کوئی پر بھی, کسی پر بھی ان کی شردھا نہیں ہے. سروجنیہ جو سب کچھ جاننے والے ہیں, جو پورن ویتراگی ہے, ان پر بھی شردھا نہیں ہے, تو اور کی تو کیا بات. آپ کچھ اندھے کہنا چاہتے؟ ہاں کسی پر نہیں بھروسہ. دیکھو من کی جو سرلتا ہوتی ہے نا, شاستر بھی جب ہم سنتے ہیں اتینت سرل پرینام ان سے سنتے ہیں, یعنی یہ ستیہ 100% سچ بات چل رہی ہے, تب جیسا پرینام ہوتا ہے. اور کوئی ایسا ارے کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے, یہ کیا ہے, سچ ہو سکتا ہے, اس طرح سے سنتا ہے, یعنی اس کے اپنا ٹیڑھاپن چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ, کہ وہ اپنے مانیتا کے انوسار اس کو ڈھولنا چاہتا ہے. یہ جو شاستر کی بات بھی اپنے مانیتا میں وہ کیسے بیٹھتی ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے, وہ اپنی مانیتا بازو میں رکھ کر یہ آچاریہ کیا کہنا چاہتے اس کی چرچا نہیں کرتا, اس کو نہیں سنتا, وہ اپنی اندر رکھتا ہے, اپنی ساری مانیتائیں ویسے ہی قائم رکھ کر پھر سننا چاہتا ہے. بالکل سرل ہردے سے اگر سنیں گے تو یہ تو سارا یہاں تو اتنا سہج اور سپشٹ ہے, یعنی جس کو ہم ویوہار میں یہ بہت ہوشیار کہتے ہیں, تو یہاں وہ ہوشیاری اپنے کو غلط راستے پر لے جاتی. جن کا سنسار الپ رہ جاتا ہے انہیں ہی سروجنتا سمجھ میں آتی ہے, हम कहते हैं ना कि शास्त्र सुनकर वो ऐसा क्यों बिहेव करता है, यहाँ तो शास्त्र कहता है और बाहर जाओ तो इसकी टोपी उसके माथे पर डालता है, ये उसका ऐसा उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, हम कहते हैं ना। तो ये ऐसा है, वो तो सर्वज्ञ की बातें बोलने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए या सुनने को अच्छा लगती है इसलिए हम सुनते हैं, परंतु अभी होनहार अच्छी नहीं है ना, तो उसका सही अर्थ उसके अंदर तक जाता ही नहीं। भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा आया कि द्वारका 12 वर्ष बाद जल जाएगी, तो अज्ञानियों को ऐसा लगा कि जैसे 12 वर्ष बाद भगवान द्वारका जला देंगे, जबकि भगवान को उससे कुछ लेना देना नहीं था, वे तो वितराग थे, उन्हें किसी से भी रंच मात्र राग द्वेष नहीं था, अतः उनके द्वारा द्वारका जलाने जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु वे सर्वज्ञ भी थे, अतः भविष्य में कहां क्या होगा उसे वर्तमान में वर्तमानवत स्पष्ट देखते जानते थे। कैसे देखते थे? वर्तमान में वो जलेगी ऐसा नहीं, वर्तमान वत जैसे सामने जल रही है ऐसा जानते थे। हाँ, क्योंकि तीनों काल की वर्तमान वत ही जान रहे हैं, सभी पर्याय जानते ना, तीनों काल की, अकेले द्वारका की नहीं, तीनों काल की सारी पर्याय वर्तमान वत जानते हो, जैसे हो रहे सामने ऐसे जानते। अतः उन्होंने उसी समय 12 वर्ष बाद द्वारका जलती हुई स्पष्ट देखी थी। जलती हुई लिखा यहाँ, जलेगी ऐसा नहीं लिखा। देखिए एक एक शब्द में उसका क्रियापद भी सोच समझ कर डाला है कि 12 वर्ष बाद द्वारका जलती हुई स्पष्ट देखी, उसी समय देख रहे थे वर्तमान में, और क्या देख रहे थे कि 12 वर्ष बाद द्वारका जलती हुई देखी, उसमें 12 वर्ष बाद कैसी लपटे उठेंगी उन्हें उस समय स्पष्ट दिखाई दे रही थी, उनकी वाणी में तो सहज ही यह तथ्य उजागर हो गया था, उन्होंने तो उसे जलाया था ही नहीं, परंतु अन्य किसी ने भी उसे नहीं जलाया था, क्योंकि उसमें स्वयं उपादानगत ऐसी योग्यता थी कि वह स्व समय में जल जावेगी। निमित्त के ऊपर आरोप आकर क्या कहते हैं कि द्वीपायन ने जलाई, परंतु द्वारका में अपनी स्वयं की योग्यता से वह जली, तथा उसका निमित्त कौन होगा यह भी उसी योग्यता में शामिल था, यानी द्रव्य की ही ऐसी योग्यता थी कि उस समय वो निमित्त भी वैसा ही, वो अपने कारण से वहाँ उपस्थित था, उसमें पर का कोई कर्तृत्व नहीं था, क्योंकि जिन निमित्तों से वह जली वे स्वयं भी नहीं चाहते थे कि द्वारका जले, विपाय नहीं चाहता कि द्वारका जल जाए, इस उपादानगत योग्यता की ओर जगत ध्यान नहीं देता, इसी कारण जगत का सहज परिणमन उसकी समझ में नहीं आता। हर एक को ऐसा लगता है कि मैं इस बात को टाल दूं उसको जुटाऊं। अब दूसरा उदाहरण देते हैं, भगवान आदिनाथ ने मारीची के बारे में एक कोड़ा कोड़ी सागर तक सब क्या घटित होना वाला है सब कुछ बता ही दिया था, क्या आप उसकी सत्यता में शंकित है? क्या वह सब कुछ पहले से निश्चित नहीं था? असंख्य भाव पहले यह बता दिया गया था कि वे 24वें तीर्थंकर होंगे, तब तो उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था बंध? सम्य दृष्टि कोई होता है, और तीर्थंकर बनने के बाद इतने असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद इतने असंख्यात भव नहीं रहते, कितने रहेंगे? हाँ? कौन से वर्तमान एक, फिर देव में जाएगा या नरक में जाएगा, और एक्सपीरियंस क्यों नहीं जाएगा? हाँ, और पहले बांधी हो तो तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा नहीं जिसने सीरियस आयु का बंद किया है वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधेगा। नहीं, उसके सारे ये नियम रहते हैं, उसके ये जो करना नियोग में ये सारे नियम रहते हैं, आपको पता नहीं है इसलिए मेरे कुछ इनको पढ़ाई हो चुकी है ना, इसलिए पूछा। ये प्रश्न पूछते हुए ये नहीं आता उसका उत्तर, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। ये कैसे कैसे बताते हैं ये अपने को तो नहीं पता चलता, आपके कंप्यूटर की बात हमें कुछ पता नहीं चलती, आपको सरल लगती है, उसमें कोई ऐसी डरने की बात नहीं। वो तो ज्ञान है ना, अभी उस संबंधी आपका विकास हो गया, उस संबंधी आपका आवरण हट गया, हमारा तो उस संबंधी बहुत आवरण है, तो उसमें क्या, वो भी सारा ज्ञान स्वभाव से ही हो रहा है और हमारा भी यहाँ ज्ञान स्वभाव से ही चल रहा है, तो विशिष्ट आवरण कम हुआ या ज्यादा हुआ उससे कुछ नहीं, तो स्वभाव से हम सारे सर्वज्ञ स्वरूप ही है, तो स्वभाव को हमेशा पकड़ने की कोशिश करना, वर्तमान पर्य की तरफ नहीं देखना, क्योंकि एक सौक्षम में टिकने वाला नहीं है, और कुछ बीमारी आए, बुढ़ापा हो गया तो अभी क्या सामने क्या हो रहा है, 5 मिनट पहले की क्या किया था वो भी याद नहीं रहता, तो इसके भरोसे मत रहना और परिणामों के भी भरोसे मत रहना, यही परिणाम कायम रहे ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकते। अभी जितने परिणाम हमारे सरल है, शास्त्र सुनने के प्रति है, उसकी रुचि है, जब तक ये परिणाम है तब तक ही अपना कार्य कर लो, न जाने परिणाम कैसे पलट जाए, कैसे संयोग में कैसे कैसे उसके हो जाएगी, उसके भरोसे मत छोड़ना, मैं करूंगा करूंगा ये करूंगा वाला आगे ही बढ़ जाएगा। करने के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, बस ये निर्णय ही करना है, होते हुए कार्य में उसकी हर एक को, राग का कार्य क्या चल रहा है, शरीर का क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, मेरा ज्ञान स्वभाव का क्या है कार्य, उसका निर्णय करना है और कुछ नहीं करना। किसी को ऐसा लगता है ना अभी करना है ना, क्या अभी सब छोड़ देंगे, अभी तो धंधा शुरू किया अभी छोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा, कुछ नहीं, जो जैसा है वो चलता रहेगा, वो कार्य मेरा नहीं है, वो मेरा कार्य क्या है, वो चलते हुए कार्यों में अपना क्या क्या हो रहा है उसका, ये मन ही मन में उसका निर्णय करना है और कुछ नहीं करना, यही पुरुषार्थ है। देखो ये क्रमबद्ध संबंधी निर्णय करना यही तो पुरुषार्थ है, तो वो करने के लिए घर में बैठना पड़ेगा, नीचे ऐसा कहीं जाकर, ये वो छोड़ने का कुछ कार्य चल रहे, चलते हुए कार्य को छोड़ना ये भी क्रमबद्ध नहीं माना, वो तो होते हुए भी अपना अपना ये जो चल रहेगा, ये जो तत्व निर्णय है वो करते रहेंगे तो हो जाएगा कार्य। आप तो छोटी उम्र में इतने इस लाइन में है, इतनी रुचि अच्छी बात, बहुत अच्छी है। देखो कहाँ तक आए हम, हाँ एक कोड़ा कोड़ी का सब कुछ बताई दिया था, क्या आप उसकी सत्यता में शंकित है, क्या वह सब कुछ पहले से निश्चित नहीं था, असंख्य वह पहले बता दिया था कि ये हुआ था ना, हाँ असंख्य वह पहले बताता था कि वे 24 तीर्थंकर हो गए, तब तो उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं हुआ था, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बन जाने के बाद असंख्य भव नहीं हो सकते, तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला तो उसी भव में या तीसरे भव में अवश्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, ये बहुभूमि वाला भी नहीं बनता। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि कर्म बंध जाने से उनका उतना भविष्य निश्चित हो गया था, यानी कर्म बंध कितना किया था उसकी तरफ देखकर तो उन्होंने कुछ आगाही नहीं की। यह सब तो यही सिद्ध करता है कि आदिनाथ के समय से ही यह निश्चित था कि वे 24वें तीर्थंकर होंगे। अभी जैसे अभी हमारे पास भविष्य के 24वें डिक्लेयर है, शास्त्र में उनके नाम है, वैसे भूतकाल के 24 ही ने, उस समय के तीर्थंकरों ने, अभी हमारे जो है ना वर्तमान के 24, वे उनके भविष्य के 24 थे, तो वे बताएंगे होगी कि नहीं होगी, यानी आदिनाथ के पहले वाली उत्सर्पी नहीं होगी, तो उसमें भी बता दिया था उन्होंने कि आगामी तीर्थंकर होंगे, तो उस समय भी निश्चित था ना, जब 24वें तीर्थंकर होने का निश्चित था तो फिर बीच के भव भी निश्चित ही थे, निश्चित थे तभी तो जानने जा सके और बताए भी जा सके। त्रिलोकपन्नति त्रिलोक काल भी जिसके आधार से बनाए हो, तीन लोक का जिसमें वर्णन है, अधिकार 4 श्लोक 1002 से 1016 तक में अष्टांग निमित्त ज्ञान द्वारा भविष्य जाने जाने का स्पष्ट उल्लेख है। ये 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान होते हैं, समय ज्ञान चंद्रिका में हम ज्ञान मार्गना सीखे थे ना, उसमें श्रुत ज्ञान के भेद में हमने अष्टांग निमित्त ज्ञान की भी चर्चा की थी, यानी वो सब स्वप्न का फल या अन्य अन्य जैसे भूमि को देखकर आकाश को देखकर ये आगाही करते ना, जैसे यहाँ हवामान का अंदाज आता है तो उसमें वो कंप्यूटर पर सारा उनके पास रिकॉर्ड है तो बता देते कि 24 घंटे के बाद यहाँ ऐसी तेज हवा चलेगी या वहाँ गरज कर बारिश पड़ेगी तो ये सारा निमित्त ज्ञान कहते उसको। आचार्य भद्रबाहु ने निमित्त ज्ञान के आधार पर उत्तर भारत में 12 वर्ष के अकाल की घोषणा की थी जो पूर्णतः सत्य उतरी। ये स्टोरी मालूम है ना, वो तो बहुत दुकाल पड़ा था, अकाल पड़ा था और वो सारा मुनि संघ दक्षिण में चला गया। फिर कुछ ऐसे मुनि वही रह गए और इतना भीषण दुष्काल हो गया कि श्रावकों ने बहुत जबरदस्ती जोर जबरदस्ती की, उनको विनती की तो उनको वस्त्र ग्रहण करने को बात किया, हाथ में लकड़ी लेना, क्योंकि आहार को जाते थे तो उनके ऊपर उपसर्ग होने लगा। लोग जो अन्य अन्य खाने को नहीं मिलते थे तो उनके पीछे पड़ने लगे, अन्य अन्य अनेक बातें बन दी है। तो शिथिला तैयार होते 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 अन्य मत की स्थापना हो गई। सबसे वो उसका पहले नाम क्या था, यापनिक संघ ऐसा कुछ था, और उसमें से ये श्वेतांबर मत की स्थापना हो गई बाद में। तो ये भद्रबाहु तब की स्टोरी है सारी। यहाँ पढ़ के सुनाया था ना पहली वाली क्लास में कि दूसरी, पहली वाली क्लास। सम्राट चंद्रगुप्त को स्वप्न आए थे जिनके आधार पर भी भविष्य की घोषणाएं की गई थी। ये सम्राट चंद्रगुप्त के भी स्वप्न मशहूर है और उनके फल भी उन्होंने बताए थे, और ये फल जो बताए थे उस समय 2000 साल पहले वो अभी सच होते हुए प्रतीत हो रहा है। तथा क्या कर्णान योग में यह नहीं लिखा है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलेंगे, और इतने ही समय में यानी काल उतना ही, उसी काल में यानी उन्हीं जीवों की बात नहीं, कोई अन्य जीव इतने ही समय में इतने ही जीव मोक्ष भी जाएंगे। यानी हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं। क्या इससे अधिक जीव निगोद से निकल सकते हैं या मोक्ष जा सकते हैं? क्या यह निश्चित नहीं है? है तो फिर क्या इससे वस्तु की स्वतंत्रता खंडित नहीं होती? इतने ही जीव मोक्ष क्यों जाएंगे, इससे अधिक क्यों नहीं? जो जाते ही नहीं तो केवल भगवान कैसे कहेंगे जाते हैं, जो हो रहा है उसी को बता रहे। कर्णान योग में चतुर्गति के जीवों की निश्चित संख्या लिखी हुई है और वह कभी कम बढ़ भी नहीं होती। मनुष्य कितने हैं उसकी संख्या निश्चित है, वो कौन से गति होने में कौन से होंगे, एक अंतर्मुख में कितने जीव, ये अल्पायु के अल्प यानी वो क्षुद्र होता है ना, अपर्याप्त अवस्था, वो कितने होंगे, पर्याप्त कितने होंगे, ज्योतिषी कितने हैं, व्यंतर कितने हैं, एक एक नरक की संख्या कितनी है, ये सारा निश्चित है। स्वर्गों की भी तो हम ज्यादा पुण्य करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, अरे वहाँ जगह खाली नहीं है, वो अन्यमतियों में बहुत कथाएं आती है, वो तो स्वर्ग में गया वहाँ दरवाजा खोला नहीं, वो फिर नीचे आना पड़ा, नहीं जाओ नीचे और तुम अपुत्रस्य गति नास्ति, ऐसी कोई बात ही नहीं, वहाँ ये पोल पट्टी है क्या वादे नानु से उसकी बात हो, नीचे गई फिर किसी की शादी की फिर उसको पुत्र हुआ, ये ऐसी ऐसी बात है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ। हमें तो प्रश्न होता है ना, ये मनुष्य अभी तो इतनी बढ़ती हुई संख्या दिख रही है और आप कहते कि मनुष्य गति इतनी दुर्लभ है, निश्चित संख्या है, तो ये हम खाली एक पृथ्वी को ही देख रहे, पृथ्वी के जीवों की मनुष्यों की संख्या गिन रहे, परंतु मनुष्य लोग तो कितना बड़ा है, भाई द्वीप जितना, तो उन सारे की जो टोटल होगी तो हमेशा उतनी ही रहेगी। यहाँ भी देखते नहीं, भारत और चाइना में तो इतनी लोक संख्या है और वहाँ स्वीडन और बच्चे पैदा करो, वहाँ का गवर्नमेंट वो दूसरा उनका एनकरेज होता है, यहाँ तो उल्टा है, तो कहीं ज्यादा कहीं कम है, तो उसके भी वो सारा निश्चित है। यदि सब कुछ निश्चित नहीं है तो फिर जीवों के पाप पुण्यानुसार नारकियों और देवों की संख्या न्यूनाधिक होती रहनी चाहिए। अभी सब पाप ही करते हुए नजर में आते हैं तो नारकियों की संख्या बढ़नी चाहिए, स्वर्गों की कम होनी चाहिए, ऐसा किसी के मन में होगा ना, तो यह सारा निश्चित है। कर्णान योग में यह भी लिखा है कि जीव नित्य निगोद से 2000 सागर के लिए निकलता है, उसमें भी 2 इंद्रिय के इतने, 3 इंद्रिय के इतने, 4 इंद्रिय के इतने भव धारण करता है, मनुष्य के 48 भव मिलते हैं, यह सब क्या है? उसमें आता नहीं मनुष्य के 48 कितने सालों में, 2000 सागर में वो भी 2000 सागर मैक्सिमम लिमिट है, सबको 2000 सागर की त्रस पर्याय मिलेगी, यानी त्रस में रहेगा ये कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है अनादिकाल से निगोद में या एकेंद्रीय में था, एक बहुत त्रस का मिला और वापिस निगोद में चला गया अनंत काल में वहीं पर, ये 2000 सागर की कोई गारंटी नहीं है। अधिक से अधिक किसी जीव को मिले तो इतना मिल सकता है, अधिक से अधिक किसी को मनुष्य पर्याय इतने काल में मिलेगी तो 48 होगी, गारंटी नहीं किसी को एक ही मनुष्य पर्याय मिलेगी, वापस चला जाएगा एक इंद्रियों में। 48 भी वो मैक्सिमम, उसमें भी 2400 पर्याप्त है, 24 पर्याप्त है, उसमें भी वो 8-8 स्त्री नपुंसक और मनुष्य इसके पुरुष के, ये मैक्सिमम की संख्या बताते, किसी को अधिक से अधिक हो तो इतने हो गए। तो ये अपना मनुष्य वो कितना दुर्लभ है इसका पता चलता है ना उस पर से। तो दुर्लभ है जो, उसके लिए आपको क्या करना है, हा? सबसे दुर्लभ में जो दुर्लभ चीज है मनुष्य वो, वो तो मिली है, उसके लिए तो अभी कुछ नहीं करना। तो जितना दुर्लभ मनुष्य वो है उतना दुर्लभ तो समय दर्शन है नहीं है, क्योंकि अनंत ये तो 608 जीव तो मोक्ष ही जा रहे हैं, और कितने ही जो असंख्या तो सम्यक दर्शन प्राप्त करे। तो जो अनंतानंत केवल ही हो चुके आज तक, जो अनंत जीव कर सकते हैं वो क्या चीज दुर्लभ हो सकती है क्या, और जो अपना स्वभाव है उसको तो जुटाना नहीं है, कहीं से चलाना है, स्वभाव तैयार करना है कि स्वयं सिद्ध है। ये शाम को जो बात है ना, वो बराबर पंचा दे के एक एक चीज अंदर जैसे उत्कीर्ण कर देना, स्वयं सिद्ध है स्वभाव मेरा, मुझे कहीं से लाना नहीं, कहीं कुछ जाना नहीं, कुछ करना नहीं, वो तो है। आज तक उसकी दृष्टि नहीं की थी, उसको दृष्टि में उसको लक्ष्य में लेना। तो उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, धर्म करने तो पहले क्या छोड़ू, पहले क्या लाऊ, पहले क्या करूँ, कितना उपवास करूँ, कितना अभ्यास करूँ। तो अभ्यास से तो ये आज तक पता नहीं था, आज तो पता चलने लगा है। तो ये तो मेरा स्वभाव तो स्वयं सिद्ध है, परंतु अभी स्वभाव अधूरा होगा ना, पूरा करना है। क्यों श्रीराम भाई, स्वभाव अधूरा है ना, अभी मेरा स्वभाव अभी अधूरा है ना, पूरा करना पड़ेगा कि नहीं, स्वभाव की बात हो रही है। स्वभाव अपना कैसा है, ज्ञान स्वभाव है, तो अभी अपने पर्याय में अभी अधूरा है, तो अपना स्वभाव भी अधूरा है ना कि पूरा है। हाँ, परिपूर्ण है। देखो दो बातें आएगी, स्वतः सिद्ध है वो तो बातें आएगी, अभी परिपूर्ण है। तो ये पूरा हम क्या अपने को ही अधूरा पूरा मान लेते, अधूरा ही मान लेते, हम सर्वतः अधूरे हैं ऐसे ही मान लेते। स्वभाव का लक्ष्य करना है ना, तो मुझे ना किसी ने बनाया है और न मुझसे आज तक कुछ उसमें से घट गया, परिपूर्ण हूँ मैं स्वभाव से। स्वभाव का दृष्टि करना है ना, स्वभाव की दृष्टि करना है, स्वभाव का लक्ष्य करना है, स्वभाव में अपनत्व स्थापित करना। पर्याय जितना ही हम अपने को मानते हैं, अभी स्वभाव का भान होते ही स्वभाव की तरफ दृष्टि जाती है, पर्याय ही स्वभाव का लक्ष्य करती है, परंतु वहाँ स्वभाव के साथ अभेद होकर अपने को परिपूर्ण मानने लगती है। तो उसका तो लक्ष्य करना है। तो क्या कहते हैं यहाँ, यानी ये तो 2000 सागर से बात निकली थी, अपने तो मनुष्य भाव तो मिला हुआ है, दुर्लभ से दुर्लभ जिसकी सब शास्त्र जो कहते हैं मनुष्य भाव के दुर्लभता की बात आती है, तो हमें तो उसके लिए तो अभी कोई प्रयत्न करना नहीं, क्योंकि हम मनुष्य है। अभी जो कुछ हमने पुरुषार्थ किया होगा पूर्व भाव में, तो मनुष्य तो पना अभी है, संधि पंचेंद्रिय पना है, मनुष्य होकर भी कितनों को ये सच्चे देवगुरु शास्त्र क्या है पता नहीं चलता, उसका भी पता चल गया है। जो सच्चा उपदेश है उसको प्राप्त नहीं करते, तो वो भी प्राप्त हुआ है, तो अपने कितना आसान हो गया। माँ ने तो मुंह में कहा ये रख दिया है और हा? अभी निगलने का है खाल, तो कितना आसान हो गया ना। हम क्या मानते, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, कुछ दुर्लभ नहीं है। ये सारी दुर्लभ में दुर्लभ बातें तो हो चुकी है, वो पीछे हो गए, तब बस अभी इतना ही करने का बाकी, इसमें कोई कठिनता है नहीं, क्योंकि स्वभाव तो अपना है। पर को अगर मिलाना है, जुटाना है, दूर करना है, तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि क्योंकि परवस्तु तो हमारे आधीन है ही नहीं है, वो तो अपने परिणमन स्वभाव से परिणम किए, तो हमें तो अपनी ओर देखना है और कुछ नहीं करना है। देखो क्या इसे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि चारों गतियों के जीवों की संख्या निश्चित है और प्रत्येक जीव के भाव भी निश्चित है तथा उनका क्रम भी निश्चित है, अन्यथा सारी व्यवस्था कैसे बनेगी? कहीं तो अधिक भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और कहीं स्थान खाली पड़े जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। यानी स्वर्ग खाली होंगे, नरक भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इस पर लोगों को लगता है कि धर्म तो दूर, क्या पुण्य पाप करना भी हमारे हाथ में नहीं है, हम तो एकदम बंध गए। प्रश्न क्या लगता है? अरे ये तो निश्चित है, तो अभी हम पुण्य पाप भी नहीं कर सकेंगे, हम पराधीन हो गए। उनसे तो क्रमशः अपने आप बदलते ही रहते हैं। हम कितना भी चाहते हुए भी जो राग आना है, जिस समय जो भाव होना है, वो हो ही जाता है। हम सोचते कुछ और कुछ नहीं बनता है, पता है ना ऐसा, क्योंकि दोनों में से किसी का भी काल अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं है। ये शुभ और अशुभ का ऐसा ही है कि शुभ में भी अंतर्मुहूर्त रहेगा, फिर अशुभ में चला जाएगा, अशुभ से शुभ, वो शुभ अशुभ अनादि से चलता ही रहेगा। अब जो शुभ में से अशुभ में जाने के बदले में शुद्ध में जा सकता है, तो अपने हाथ की बात है वो। देखो अतः प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन अवश्यम भावी है। अनंत प्रयत्न करके करने पर भी आप अंतर्मुहूर्त से अधिक शुभ भाव में नहीं ठहर सकते। यदि शुद्ध में नहीं गए तो फिर अशुभ में जाना अनिवार्य है। यह परिवर्तन निगोद में भी हुआ करता है, वहाँ भी शुभ और अशुभ। यदि निगोद में शुभ भाव नहीं मानेंगे तो निगोद से जीव अन्य एक इंद्रियों में या दो इंद्रियों में या मनुष्य में कैसे आगे? तो शुभ से ही आए, शुभ होने से वो त्रस्त पर्याय प्राप्त हुई थी उनको, अन्यथा वहाँ से जीव निकलेगी कैसे? सैन्य पंचेंद्रिय होने का पुण्य एकेंद्रिय से लेकर असैन्य पंचेंद्रिय तक के जीव असन्नी दशा में ही बांधते है। यानी एकेंद्रिय से जो जीव पंचेंद्रिय में जन्मा तो वहीं पर कुछ पुण्य किया, इसलिए वो आया ना। मनुष्य गति बांधने का भी वो भी कुछ शुभ परिणामों के कारण ही बनती है, तो वहाँ होते हुए भी उन्होंने शुभ परिणाम किए तो उसको मनुष्य पर्याय बंदी। कोई एकेंद्रिय में इतना पुण्य नहीं कर सकता कि वो देव में जाए। विकलेंद्रिय भी देवगति नहीं बांध सकते, वो तो सैनी या असैनी, असैनी भी मरकर जा सकता है, वो बहुनत्रिक आदि में इतना पुण्य तो असैनी भी करता है कि वो देव में जाए या पहले नरक में जाए। यानी देव में और नरक में जाने का तो पुण्य या पाप पंचेंद्रिय जीव ही करता है। एक इंद्रिय जीव पाप करके नरक में भी नहीं जाता, पुण्य करके स्वर्ग में भी नहीं जाता, परंतु मनुष्य में जा सकते हैं। ये तो हुआ था हमारा सारा, ये विषय यहाँ चला था, कौन से जीव कौन कौन से कर्म बांधते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वैसे नारकी भी कोई एक इंद्रिय में नहीं जाता पाप करके। हाँ देव जा सकता है, सौधर्म यानी बहुनत्रिक और सौधर्म तक के दो, तो वो सारे एक इंद्रिय में जा सकते हैं। एक इंद्रिय पृथ्वी काय आदि में जा सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे है, वो अग्निकाय और वायुकाय में नहीं जाएंगे, वहाँ के कोई मनुष्य भी नहीं होंगे, वो एकदम नीचे से नीचे वाले हैं अग्निकाय वायुकाय, वहाँ इतने परिणाम शुभ नहीं होते कि जो मनुष्य गति बांध वायुकाय। और देव भी मरकर अग्नि वायु में नहीं जाते, पृथ्वी काय में जाते हैं, और वो भी पर्याप्त होते हैं वहाँ से, अपर्याप्त में नहीं जाते। वो सारा उसमें बहुत सारी डिटेल्स है, कौन से शुभ प्रकृति है, कौन से अशुभ है, कैसे कहाँ बनती है, ये सारा उसका मैथमेटिक्स है। यानी उससे क्या वो क्रमबद्धता ही सिद्ध हो जाती है ना। ऐसा नहीं होता कोई भी कहीं भी जा सकता था, तो ये उसके वैसे नियम भी नहीं बनते। आज तो हो चुका ये है ना, असन दिशा में बांधते यहाँ तक अभी कर लेंगे। क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सला दे सबोरो।